कीर्तन
जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो हमने पिछले चैतन्य भागवत के रीडिंग में सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक दिन वराह भगवान वराह से संबंधित श्लोक को सुना था और श्लोक को सुनने के बाद वो दौड़कर जोर जोर से हुंकार और गर्जना करते हुए मुरारी गुप्त के घर में चलते हैं। तो मुरारी गुप्त जो साक्षात हनुमान है भगवान राम के भक्त हैं तो मुरारी गुप्त के वहां जाते हैं और अपना ये उनके घर में घुस के ही जो पानी का वाटर पॉट होता है गड्डू उसको ले लेते हैं और अपने वराह का रूप प्रकट करते हैं। जैसे वराह भगवान ने पृथ्वी को धारण किया था अपने तस जो होते हैं उसके ऊपर तो वैसे ही उन्होंने वो गड़ू धारण किया था और भगवान चैतन्य उस रूप में थे उस फॉर्म में थे। और फिर मुरारी गुप्त जो थे वहां बैठे हुए तो मुरारी गुप्त को कहते हे मुरारी आप मेरा स्तुति करो स्तुति करो। तो जैसे मैंने पिछले रीडिंग में कहा था कि भगवान स्तुति करते तो मुरारी बहुत चलाक है वो कहते भगवान आपका स्तुति तो अनंत देव करते हैं और अनंत मुखों से करते हैं मैं तो एक शूद्र नीच व्यक्ति हूँ मेरे पास तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है मैं क्या आपकी स्तुति कर सकता हूँ। तो ये वैसे ही है जैसे मैंने कहा था कि कई बार हम भक्तों को कहते कि आप जरा कृष्ण के बारे में बताओ मुझे तो भक्त कहते प्रभु जी आप तो इतने सीनियर हैं आप इतने बड़े हैं मैं क्या बोलूं आपके सामने मतलब ये मूर्खता है उसकी वो छुपा रहा है किस प्रकार से ये भी कह रहे हैं वो बहाना बनाकर क्योंकि जगत में सबसे कोई कठिन चीज क्या है भगवान के बारे में बोलना। इसको हमें एग्जाम लिए गए कई मंदिरों में जाकर एक भक्त राधाकृष्ण प्रभु उनका ये स्वभाव था वो जाके चेक किया करते थे कई मंदिरों में और जो भी भक्त मिले उनको चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो ब्रह्मचारी हो वो कहते प्रभु प्लीज कुछ कृष्ण के बारे में बताओ। तो भक्त तो पसीने छूट जाते थे जैसे उसको बोला जाता था कि कृष्ण के बारे में बोलाओ क्योंकि सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या है इस जगत में भगवान के बारे में बोलना क्योंकि बाकी विषयों में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। आजकल क्या टेक्नोलॉजी आ गया कितने जीबी के MP3 आ गए या फिर कोई भी विषय है उसमें तो हम प्रवीण हैं एक्सपर्ट हैं लेकिन वो जब राधाकृष्ण प्रभु जाते थे और कई भक्तों को उन्होंने कहा तो लेकिन भक्त के मुंह से भगवान के बारे में वर्णन नहीं होता था। तो मुरारी गुप्त कहते कि मैं कैसे बोलूं तो वो कंपित होने लगा उनका जो शरीर है। तो फिर मुरारी गुप्त कहते हैं उनको हम आगे पढ़ते हैं अनंत ब्रह्मांड जार एक फने धरे सहस्र वदन हय जारे स्तुति करे। हाँ कहते कि अनंत ब्रह्मांड उनको जो अपने फनों में धारण करते हैं अनंत शेष जो बलराम के ही विस्तार है सहस्र वदन हय जारे स्तुति करे उनके पास सहस्र मुख है वो आपकी स्तुति करते हैं। तब ना ही पाया अंत से ही प्रभु काय तुम्हारा के समर्थ है। तो ऐसे जो अनंत शेष है वो भी आपका गुणगान करते हैं वो भी अंत नहीं प्राप्त करते इतना आपका गुणगान बहुत बड़ा है तो फिर कौन समर्थ है आपकी स्तुति करने में। जे वेदेर मत करे सकल संसार से वेद सर्व तत्व ना जाने तुमार। तो जो सारे लोग वेदों की चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि वेद भगवान को जानने के लिए है लेकिन ऐसा वेद भी आपको नहीं जानता है आपकी स्तुति नहीं कर पाता है। जतदे के सुने प्रभु अनंत भगवान तोरलोम कूपे गिया मिला यखान। तो वो कहते हैं कि जितने भी जो ब्रह्मांड है या अलग अलग जो प्लैनेट्स है भुवन है जो हम सुनते हैं जिनके बारे में या देखते हैं तो लेकिन ऐसे जो अनंत ब्रह्मांड है और उनमें से कई सारे जो लोक हैं वो तो आपके रोम कुप में लीन हो जाते हैं। हे न सदानंद तुम्हें जे कर जखने बल देखी वे देता हा जाने वे के मने। तो मुरारी गुप्त कहते हैं कि ऐसा तो कहते कि आपका जो ये दिव्य स्वरूप है वही इन सब ब्रह्मांडों के लीन होने के बाद भी जो शेष रहता है और आप कुछ भी करते हैं तो आपकी जो एक्टिविटी है वो वेद माना जाता है। मतलब भगवान कुछ भी करे उसको क्या कहते हैं, लीला। क्या शब्द है, लीला। अच्छा भगवान कुछ भी करे तुरंत उनके ऊपर लिखा जाता है। हाँ वो चोरी कर ले तो भी वो बहुत बड़ा एक्टिविटी हो जाता है। हाँ तब तो वो लीला है, दिव्य हो जाता है। तो कहते आप कुछ भी करोगे ना तो वेद तुरंत नोट कर लेगा और वेद तुरंत गुणगान करते रहेगा। तो कहते आपके गुणों का गान करना मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। अतएव तुम्हें से तुम्हारे जान मात्र तुम्हें जाना इले जाने तोर कृपा पात्र। और केवल आप ही अपने को जानते हो अच्छी तरह से और वही व्यक्ति आपको जान सकता है जिसके ऊपर आप कृपा करोगे। तुम्हारा स्तुति मोर कोना अधिकार एत बलि कांदे गुप्त करे नमस्कार। तो मुरारी गुप्त रोने लगे, कहते कि आपकी स्तुति करने में मेरा, मैं अधिकारी नहीं हूँ, आपकी स्तुति करने की योग्यता नहीं है मुझमें। गुप्त वाक्य तुष्ट हैला वराह ईश्वरे वेद प्रति क्रोध करे बलए उत्तरे। तो इस प्रकार से जो मुरारी गुप्त ने कुछ वाक्य बता भगवान की स्तुति में बोले थे, तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु जब वराह फॉर्म में है तो वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और उनके बाद वाक्यों से प्रसन्न होते और वेदों के प्रति क्रोधित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु वराह रूप में। तो वो कहते हैं हस्तपद मुख मोरा नाही कलोचन यही मत वेद मोरा करे विडंबन। तो वेदों को अभी क्रोधित होते हो, क्या कहते कि ये जो वेद है मेरा वर्णन कैसा करते हैं, वो वेद कहते हैं कि मेरे हाथ नहीं है, जो परम भगवान है उनके हाथ नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनको मुख नहीं है, उनको आंखें नहीं है। तो भगवान कहते कि ऐसे मेरी निंदा की है उन वेदों ने। काशिते पढ़ाया बेटा प्रकाश आनंद। देखो महाप्रभु अभी तो नवदीप में थे, संन्यास लेके तो वो जाएंगे बाद में, लेकिन अभी से मायावादियों से क्रोधित होते हैं। तो हमारी परंपरा बहुत शक्तिशाली है जो मायावादियों को, मायावादियों का पीछा नहीं छोड़ती है। चाहे चैतन्य महाप्रभु नवदीप में है तभी अभी उनसे उनका नाम ले रहा है कि वो जो बेटा है, वो जो व्यक्ति है प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में, काशिते पढ़ाय बेटा प्रकाश आनंद से बेटा करे मोर अंग खंड खंड। तो कहते वो वहां मेरे अंग के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। मतलब मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, शरीर नहीं है, वो निराकार है। तू ही एक निराकार, बाकी सबको आकार। एक संप्रदाय भी आजकल, तो कहते तू ही एक निराकार। तो सब लोग कहते कि आप ही एक निराकार हो, मेरे बाप को भी आकार है, मुझे भी आकार है, और मुझसे जो आगे जन्म लेगा उसको भी आकार है, लेकिन जो सबको आकार देने वाले हैं उनको आकार नहीं है। मतलब कितनी बड़ी मूर्खता है। तो महाप्रभु कहते ऐसा है, ये मेरी निंदा कर रहा है, ये जो वेद है। और ऐसा वेद कौन पढ़ाता है, प्रकाशानंद सरस्वती। बाखाने ये वेद मोरा विग्रह न माने सर्व अंगे है लकुष्ट तबु नहीं जाने। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो वेद है वो मेरी व्याख्या करता है और मेरे विग्रह को नहीं मानता है। अब मैंने पहली बार किसी मायावादी का से मुख से सुना होगा, क्योंकि इन सब चीजों को तो शास्त्र में पढ़ा है। अभी एक हफ्ता पहले मैं और श्री निकेत प्रभु हम प्रवचन देने गए पहाड़गंज में किसी भक्त के वहां, तो काफी लोग आए थे, 100-150 समथिंग। उनके मदर, ग्रैंड मदर ने शरीर छोड़ा था, तो उसके बाद सबको इकट्ठा किया था और छोटा सा प्रवचन वगैरह रखा था, और वो जो होता है ना फाइनल प्रोग्राम, तो उन्होंने कीर्तन किया और मैं लेक्चर दिया एक घंटा। तो फिर एक पंडित जी हमारे पास ही बैठे थे ऊपर स्टेज में, तो हम दोनों बैठे थे, पंडित जी बैठे थे। तो मैंने तो बड़ा भगवान का स्तुति कर दिया, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन। तो पंडित जी के पास 5 मिनट 10 मिनट के लिए दिया हमने 1.25 घंटा बोलने के बाद। तो पंडित जी ने तो इतना मायावाद बका उनके मुख से, हम तो बड़े गुस्से होने लगे। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये सही में महाप्रभु और ये जो आचार्य ने वर्णन किया कि मायावाद सुन के ही व्यक्ति हय सर्वनाश, कोई मायावाद सुनने का नाश होगा, ये तो पढ़ा है लेकिन मैंने आज तक सुना नहीं था, ना टीवी ना कहा। लेकिन उस दिन 10 मिनट सुनना पड़ा मायावाद साक्षात, बिल्कुल पास बैठ के वो पंडित जी, और वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, लोग भी इतने मूर्ख थे, कहते तो मूर्ति पूजा वगैरह है ना, जो विग्रहों की पूजा करना, ये तो नए भक्त के लिए है, बाद में आप आत्मा के लेवल पे आओगे और फिर आप परमात्मा है उसी में तो लीन होना है। सारी नदियां जो जाती है वो सागर को ही तो मिलती है। मैंने देखा ये अरे क्या हो रहा है। और उसने कहा आप सब लोग तो आपके जीवन को, जीवन के लक्ष्य को जानते ही हैं, तो मैं सोच रहा था ये लोग जानते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। कहते कोई आपको अपने जीवन के लक्ष्य से भटकाएगा नहीं। हाँ तो ऐसे ऐसी बातें कह रहा था। कहते ये नाम वगैरह लेने की तो आवश्यकता नहीं है, बस आपको स्मरण करना है आत्मा के, आपको तो पता चल ही गया है आप कौन हो, और आपको तो ले नहीं होना है। तो ऐसा ऐसा मायावाद बक रहा था, तो मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने बोला सर्वम भट्टाचार्य को, मायावाद सुनी ले है सर्वनाश, कि कोई सुनेगा ना उसका नाश जरूर हो जाएगा। महापुरुष कितना क्रोधित हो रहे हैं, तो महाप्रभु तो कह रहे कि वो प्रकाशानंद वहां पढ़ा रहे हैं, तो भगवान को पता होता है कहां मायावाद की व्याख्या हो रही है। तो वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि तबु नहीं जाने, सर्व अंगे हैल कुष्ठ तबु नहीं जाने। तो उन्होंने कहा इसी के कारण उसके सारे अंगों में कोड हो गया है, हाँ उसकी फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं। अभी इस बात को कुछ मतलब प्रकट नहीं किया है कैसे, चाहे उनको कोड हो गया था या कुछ हो गया था, क्योंकि महाप्रभु कहते वो प्रकाशानंद मेरे ऐसी व्याख्या करता है, कहते उसके कारण उसको कोड हो गया है। सर्वयज्ञमय मोर जे अंग पवित्र आज भव आदि गाय जहर चरित्र। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि मेरा जो दिव्य शरीर है वो सब पवित्र है, यज्ञ के समान मेरा अंग है, और मेरा चरित्र इतना मधुर है कि आज भी शिव जी ब्रह्मा जी ये चरित्र का गान करते हैं। पुण्य पवित्रता पाए जे अंग परशे तहां मिथ्या बले बेटा के मन सहसे। कहते कि मेरे अंगों का स्पर्श करने मात्र से, मेरे दिव्य शरीर को देखने मात्र से व्यक्ति पुण्य और पवित्र हो जाता है, लेकिन वो मिथ्या, वो व्यक्ति, वो जो प्रकाशानंद है, वो इस साहस ऐसे करता है कि मेरा जो शरीर क्या है, मिथ्या है। क्या कहते मायावादियों का स्लोगन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या में भगवान का जो विग्रह है वो भी मिथ्या है। सुना मुरारी गुप्ता कहे मत सार, वेद गुह्य कहे तुमार गोचार। तो कहते कि हे मुरारी गुप्त सुनो, मैं तुम्हें सार बताता हूँ जो वेदों के लिए भी गुप्त है और मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। आमि यज्ञ वराह सकल वेद सार, आमि से करिनु पूर्वे पृथ्वी उद्धार। तो महाप्रभु कहते मैं वही यज्ञ वराह हूँ, और मैंने ही पृथ्वी को जो समंदर के अंदर चली गई थी वहां से मैंने उद्धार किया है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही गुह्य चीज उनको बताते हैं मुरारी गुप्त को, और वो कहते हैं संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार, भक्त जन लागे दुष्ट करे मुसंहार। मेरा अवतार तो संकीर्तन का आरंभ करने के लिए हुआ है, और भक्तों कुछ के प्रति जो द्वेष रखते हैं, यानी ईर्ष्या रखते हैं, उन सबका संहार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। सेवक के रद्रोह मुए सहे तेना पारो, पुत्र यदि हय मोर तथापि संहार। आप देखो वैष्णव अपराध का बताते हैं कि यदि मेरे प्रति कोई अपराध करता है तो ठीक है, मैं तो सहन कर लेता हूँ, सेवक के प्रति, भगवान के सेवक के द्रोह, मेरे सेवक के प्रति कोई द्रोह करता है, दुष्ट सा आचरण करता है, मैं सहन नहीं कर पाता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पुत्र यदि है मोर, चाहे मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, मैं उसको भी नाश कर दूंगा, उसको संहार कर दूंगा। मतलब देखो कि भगवान इसे सिखाते हैं कि उनका भक्त उनके लिए कितना अधिक प्रिय है। पुत्र काटे अपना र सेवक लागिया, मिथ्या नाही कहे गुप्त सुन मन दिया। तो महाप्रभु सोचते हैं, वराह रूप में है वो, कि हे मुरारी गुप्त, तुम्हें तो झूठा लग सकता है कि मैं अपने पुत्र को भी मार सकता हूँ, यदि कोई मेरे भक्त का, मेरा पुत्र भी मेरे भक्त का अपराध करता है। तो कहते ये सत्य है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जे काले करे न मुये पृथ्वी उद्धार, हाय लक्ष्य तिर गर्भे परश अमार। तो उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय मेरे स्पर्श से पृथ्वी देवी गर्भवती बन गई थी। भगवान वराह का स्पर्श होने से पृथ्वी देवी गर्भवती बन गई थी। तो उदाहरण दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं, मेरे भक्त का अपराध मेरा पुत्र भी करे तभी भी मैं उसको विनाश कर देता हूँ। तब ये उदाहरण देते कि देखो मेरा कौन पुत्र था, उसने कौन सा अपराध किया था, कैसे मैंने उसका नाश किया। तो महाप्रभु कहते जब मैंने इस वराह फॉर्म में पृथ्वी देवी को ऊपर ले आया, तो उस मेरे स्पर्श से पृथ्वी गर्भवती हुई। हैल नरक नामे पुत्र महाबल, आपने पुत्रे र धर्म कहे लुसकल। और उससे मेरा पुत्र बना जिसका नाम था नरक, जो सबसे बलवान था नरकासुर। और मैंने उसको सारे धर्म के तत्व समझा दिए थे। भगवान कहते हैं, महाराज है लेन अमर नंदन, देव बीज गुरु भक्त करे न पालन। तो जब मेरा ये पुत्र जो नरकासुर था, ये जब महाराज बन गया, राजा बन गया, तो वो सारे देवता या ब्राह्मण है, गुरु है, भक्तों का पालन करने लगा। फिर क्या हुआ, दैव दोषे तहार है ल दुष्ट संग, बानेर संसर्ग है ल भक्त द्रोहे रंग। लेकिन एक चीज हो गई, है ल दुष्ट संग, असत संग हो गया। महाप्रभु ने क्या कहा, वैष्णव कौन है, असत संग त्याग, यही वैष्णव आया। वैष्णव तो वो है जो अपने आप को असत संग से दूर रखता है, ये उसका मेन निपुण है वैष्णव का। तो वो कहते कि लेकिन मेरा ये पुत्र जो नरकासुर था, जिसको दुर्भाग्यवश से बानासुर, आप कृष्णाबुक में बानासुर की कथा आती है, उसकी कितनी सारी बुझाएं थी, शिवजी के भक्त थे बानासुर, और फिर भगवान ने, और वो शिवजी को प्रसन्न किया था अपने कितने सारे हाथों से, वो बड़े बड़े ड्रम्स बजा बजा के, और फिर भगवान ने उसके सारे हाथ काट दिए थे, उनका अहंकार हो गया था। तो वो कहते कि इस बानासुर का संग करके मेरा जो पुत्र नरकासुर वो भी दुष्ट बन गया। और जैसे बानासुर मेरे भक्तों के प्रति द्वेष ईर्ष्या करता था, उसी प्रकार से मेरे पुत्र की भी हृदय में वही भावना आ गई, और वो भी उसी प्रकार से करने लगा। सेवके रहिंसा मुई ना पारो सहिते, काटिनु आपना पुत्र सेवक राखिते। तो कहते हैं कि मैंने सेवकों की रक्षा करने के लिए मैंने अपने पुत्र नरकासुर का सर काट लिया। जनमे जनमे तुम्हें सेवी अक्ष मोरे, ऐसे का सकल तत्व कही लतुमारे। तो उन्होंने कहा जन्म जन्मों से आपने मेरी सेवा की है, इसी कारण ये सीक्रेट, हाँ रहस्य मैंने बताया है, हाँ मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय हैं, और इसको मैंने आपको सुनाया है। सुनिया मुरारी गुप्त प्रभु रवचन, विवल हया गुप्त करे न क्रंदन। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सुनते हैं मुरारी गुप्त, तो बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं, कि कृष्ण कितने अधिक दयाद्र है, कितने अधिक दयालु है, कि अपने भक्त के लिए भी वो अपने पुत्रों का गला भी काट सकते हैं, इतने अधिक भगवान के भक्त प्रिय है। इसलिए आप देखो 11 कैंटो में वर्णन आता है, कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप मुझे इतने प्रिय हो जितना मुझे लक्ष्य भी प्रिय नहीं है, मेरे भाई बलराम मुझे प्रिय नहीं है। शिवजी को जितना वैष्णवाना मेहता शंभू कहा गया है वो मुझे प्रिय है नहीं है, और मैं अपने आप को इतना प्रेम नहीं करता हूं जितना तुम मुझे प्रिय हो। इस प्रकार से वह स्थापित करते हैं भगवान कि भक्त कितना अधिक प्रिय है भगवान के लिए, तो फिर उस भक्त के प्रति किसी प्रकार का कोई अवहेलना करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, अपराध करता है, तो फिर भगवान उसका सहार करते हैं, विनाश करते हैं। तो अद्भुत है चैतन्य भागवत की लीला। चैतन्य भागवत के, चैतन्य देव के, श्रील वृंदावन दास ठाकुर के, गौर प्रेमानंद।